भक्तजनों देवियों की आज्ञा मानकर बर्बरीक वहीं रहने लगे। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों का पूजन करके विद्या की सफलता के लिए उन्हीं देवियों की आराधना में दत्तचित्त हो गए। तभी देवियों ने उस ब्राह्मण के स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया और उसके साथ साथ ये आदेश भी दिया कि तुम सिद्ध माता के सामने आंगन में संपूर्ण विद्याओं की साधना करो, हमारा भक्त बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। तब उस विजय नामी ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि हे पार, मैं विद्याओं का साधन करूं तब तक कोई विघ्न ना होने पाए, अतः विजय के साधन में विघ्न डालने वाले रिपलेंद्र दानव व द्रुह द्रुहा राक्षसी आदि का सहज ही संहार कर पाताल के नागों को पीड़ा देने वाले पलासी नामक असुरों को रोंद कर बर्बरीक ने यमलोक भेज दिया। उन असुरों के मारे जाने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरीक को वर मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने सविनय होकर विजय ब्राह्मण की निर्विघ्न तपस्या सफल हो जाए यही वर मांगा। उस समय वहां कई नाग कन्याएं बर्बरीक का रूप तथा वीरता देखकर उनके साथ विवाह करने को उद्यत हो उठी, किंतु उन सब को यही कहा बर्बरीक ने कि मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हुआ है। वो नाग कन्याएं भी बर्बरीक के इस व्यवहार पर बहुत प्रसन्न हुई और उसे सदा विजयी होने का वरदान भी दिया। तत्पश्चात उस विजय नामक ब्राह्मण को देवताओं ने सिद्ध ऐश्वर्य प्रदान किया। सिद्ध ऐश्वर्य प्राप्त होने के कारण ही वह ब्राह्मण सिद्धसेन के नाम से विख्यात हुआ। उसके वहां से चले जाने के काफी काल उपरांत पांडव बंधु भी दूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ गंवाकर वनों में भटकते हुए उस सिद्ध तीर्थ तक आन पहुंचे। सभी ने देवियों के दर्शन किए, उनका पूजन किया। इसके पश्चात विश्राम के लिए कुछ दूर हटकर सभी बैठ गए। तब देवेच्छावश भीम उठे और पावन जल कुंड में बिना हाथ मुंह धोए उतर गए और मुंह में जल लेकर कुरले आदि करने लगे। यह देखकर बर्बरीक को तो बहुत क्रोध आया। वो पास आकर महाबली भीम से बोले कि आप किस प्रकार के तीर्थ यात्री हैं? आपको पता है कि यह जल देवी पूजन के कार्य में लाया जाता है और आप बिना हाथ पांव धोए जलकुंड में आ गए हैं और ऊपर से कुरले इत्यादि कर रहे हैं। अब दोनों बहुत ताकतवर थे, दोनों को क्रोध आ गया। अब मल्ल युद्ध होने लगा। भीम को अपने बल पर गर्व था, किंतु संपूर्ण शक्ति लगाने के उपरांत भी वो महाबली बर्बरीक को हरा ना सके। तभी भगवान शंकर सभी देवियों सहित साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने भीम से कहा कि भीम, मन में ग्लानि मत करो, यह तुम्हारा ही वंशज है, यह तुम्हारे पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक है। अब बर्बरीक को बहुत क्षोभ हुआ कि हो, मैंने यह क्या किया, अपने पूज्य दादा पर ही हाथ उठा दिया, धिक्कार है मेरे जीवन पर। ऐसा विचार करके बर्बरीक शरीर त्यागने की ओर चल पड़े। तब शक्ति की महिमा जानने वाली और शक्ति प्रदान करने वाली देवियों ने तथा महादेव प्रभु भोलेनाथ ने बर्बरीक को समझाया कि नहीं बर्बरीक, अभी तुम्हारे देह त्यागने का समय नहीं है, अभी तो तुमने बहुत कुछ करना है। सभी के कहने पर बर्बरीक शांत हुए और अपने पूरे कुटुंब के साथ मिल बैठे। पांडव बंधुओं के चले जाने के पश्चात भी बरबारीक के मन में भक्ति और तपस्या की लगन की ज्योति जलती ही रही। और इधर पांडव बंधु अपने अज्ञातवास का समय पूर्ण करने के पश्चात वापस आ गए, किंतु दुर्योधन उन्हें राजपाट वापस करना तो क्या 5 गांव तक देने को तैयार नहीं हुआ। और अंततः महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध नियत हो गया। संपूर्ण देश के रास्ते जैसे कुरुक्षेत्र की ओर ही चल पड़े। दोनों सेनाएं आमने सामने इकट्ठी होने लगी, किंतु महाभारत के महानायक योगींद्र भगवान श्री कृष्ण वो तो अंतर्यामी थे, वो तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने मन में विचार किया कि पांडवों की हार का अर्थ यह होगा कि धर्म हार जाए और अधर्म की जीत हो, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें यह भी पूर्ण विश्वास था कि यदि बरबरीक के मन का जो भाव है वो पूर्ण हो गया तो पांडव कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जिस ओर से बरबरीक ने आना था उसी रास्ते में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। जब बरबरीक वहां पहुंचे तो उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया तो श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम कौन हो, युद्ध की ओर क्यों जा रहे हो। तब बरबरीक ने कहा कि मेरा नाम बरबरीक है और मैं युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। तब ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा कि हे वीर, तुम किस पक्ष की ओर से लड़ोगे। इस पर बरबरीक ने उत्तर दिया कि मैं प्रथम तो युद्ध देखूंगा, उसके पश्चात जो पक्ष हारने लगेगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम्हें अपनी वीरता पर इतना मान क्यों है। कहले प्रभु, मान नहीं है, ये मेरी शक्ति है। मेरा एक बाण जिस पीपल वृक्ष के नीचे आप बैठे हुए हैं उसके सभी पत्तों को एक निमिष में बेध सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू ऐसा करके दिखाओ। इस पर बरबरीक ने सन्निधान करके वाण छोड़ दिया। उस वाण ने देखते ही देखते उस पीपल वृक्ष के सभी पत्तों को एक निमिष में बींध दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ते को पांव के नीचे छुपा रखा था, बाण ने उसे भी नहीं छोड़ा और भगवान के पांव को बींधता हुआ उस पत्र में भी जा घुसा। इस पर श्री कृष्ण बोले कि इसमें कोई संशय नहीं वीर कि तुम महावीर हो, किंतु क्षत्रिय का वीर या महावीर होना ही संपूर्ण क्षत्रिय होने का कारण नहीं है, उसे तो बहुत बड़ा दानी भी होना चाहिए। इस पर बरबरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण, आज की वेला में जो मन में आए मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे वीर, मुझे अपना शीश दे दो। अचंभित बरबरीक ने पूछा कि ब्राह्मण, मैंने वचन दिया है अपना शीश तो तुम्हें अवश्य दूंगा, किंतु सत्य बताओ कि तुम हो कौन और मेरा शीश क्यों चाह रहे हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप बरबरीक को दिखाया और बताया कि देखो बरबरीक, अगर तुम युद्ध में भाग लेते हो तो कौरव और पांडव इन दोनों में से कोई नहीं बचेगा, धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा शीश देना ही अत्युत्तम है। तब बरबरीक ने कहा कि हे वासुदेव नंदन, मैं तो शिशु अवस्था से ही आपका पुजारी हूं। धन्य भाग मेरे जो आज मेरा इष्ट मुझसे मेरा शीश मांग रहा है। किंतु एक इच्छा मेरी भी थी, मैं इस युद्ध को अंत तक देखना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, और इतना कहते ही सुदर्शन चक्र से बरबरीक का शीश काट दिया। तभी सभी पांडव वहां पर रुदन करते हुए आ गया और भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे कि आपने इस परम वीर का, इस निर्दोष का शीश क्यों मांग लिया। तभी सिद्धांबिका, तारा, कपाली, सुवर्णा, त्रिलोक नेत्री, चंडिका, प्राणेश्वरी, भूतंबिका, क्रोड़मातु, हर सिद्धिश्चपुरा, चर्चिका, योगेश्वरी व चैक वीरा 14 देवियां प्रकट होकर कहने लगी कि हे पांडव वीरो, रुदन मत करो। बरबरीक को मारने का कारण आप हमसे सुनो। एक समय सब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, भूमि का भार दूर करो। तब शेष शय्यावासी भगवान विष्णु ने सबको संतोष दिलाते हुए अंशा अवतार लेकर भूभार उतारने का वचन दिया। उसी समय वहां एक सूर्यवर्चा यक्ष बोला कि मैं अकेला ही अवतार लेकर भूमि का भार दूर कर दूंगा। तब उसे ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि जब तेरा भूमि भार उतारने का समय आवेगा, तब तेरी कृष्ण के हाथ से मृत्यु होगी। तब सूर्यवर्चा ने शाप दूर होने की प्रार्थना की। उसी समय भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु के बाद आगे कलियुग में तुम्हारी ही श्याम नाम से पूजा होगी और तुम देवियों से भी बढ़ चढ़ कर पूजे जाओगे। इतना कहने के बाद कृष्ण व देवियों ने बरबरीक के शीश को दिव्य अमृत जड़ियों के सहारे से पहाड़ के ऊंचे शिखर पर स्थापित कर दिया। 18 दिन युद्ध चलने के बाद बड़ी मुश्किल से हार जीत का निर्णय हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडव विजय हुए तथा अपनी जीत पर उन्हें अभिमान होने लगा। तब कृष्ण उनको लेकर वहां पहुंचे जहां बरबरीक का सिर स्थापित था। बरबरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे व फूले न समाए, और सब समझ रहे थे कि जीत का सब श्रेय हमें ही है। तब बरबरीक के सिर ने मुस्काते हुए कहा कि हे पांडव वीरो, आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। आपको यह जीत श्री कृष्ण की नीति के कारण मिली है और इस युद्ध के वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही हैं। इन्होंने अपनी बुद्धि व नीति के सहारे इस महायुद्ध को जीता है। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आ रहा था। कृष्ण नीति की जय हो। यह कहकर बरबरीक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। यह सुनकर भीमादि पांडव काफी लज्जित हुए। तब कृष्ण ने कहा कि बरबरीक, मैं तेरे महान त्याग से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूं कि कलियुग में मेरे ही नाम से महान पूजनीय होगे और तुम्हारे सुमरण से सर्व इच्छा पूर्ण होगी। भक्त जनों, वही बरबरीक यानी श्याम जी का सिर कालांतर तक यहां खाटू की भूमि के अंतर्गत समाया रहा और कलियुग में वरदान के अनुसार इनका प्रकट होने का समय जब आया तो वहां एक गायक रोजाना जाकर अपना दूध अर्पित करने लगे। मालिक बहुत चिंतित हुआ और गाय का पीछा करने लगा। मालिक ने एक दिन गाय का पीछा करते हुए देखा कि संध्या के समय वे गाय खाटू में कुंड की जगह पर खड़ी हो गई है और अपने आप उसके स्तनों में से दूध भूमि पर गिरने लगा। तब गाय के मालिक ने सोचा कि यहां कौन ऐसा है जो गाय का दूध है इस प्रकार पीता है। उसने उस भूमि को खोदना शुरू कर दिया। जब काफी खुदाई हो चुकी तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे। उसने और धीरे धीरे खुदाई की, तब वहां श्री श्याम जी का अर्थात बरबरीक जी का शीश सामने आया। उस शीश को एक ब्राह्मण को दे दिया गया जिसने निरंतर कई दिनों तक उस शीश का पूजन किया। भागवत पुराण के अनुसार यह खाटू खटांक नामक नगरी थी। यहां के राजा को स्वप्न में श्याम जी ने कहा कि तुम यहां एक मंदिर बनाकर उस ब्राह्मण से मेरी मूर्ति लेकर स्थापित करो, तुम भी यश के भागी बनोगे। तब उस राजा ने यह मंदिर बनवाकर श्री श्याम जी की मूर्ति शुभ मुहूर्त में मंदिर में विधिवत उत्सव सहित स्थापित करवाई। श्री श्याम जी महाराज आज भी सच्चे मन से पुकारने पर अपने भक्तों की संपूर्ण इच्छाएं पूरी करते हैं। खाटू नगर के बीच में श्री श्याम जी का मकराने का मंदिर बना हुआ है। पास में ही श्री श्याम कुंड है जिसमें श्री श्याम जी की मूर्ति निकली थी। कुंड में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। मंदिर के पीछे बगीची है जिसमें हमेशा श्रृंगार के लिए फूलों का चयन किया जाता है। श्याम जी की दिन में 5 बार आरती होती है जिसमें भक्त जन भाव विहल होकर नृत्य व गान करते हैं। बोलो खाटू भगवान की जय, बोलो श्री श्याम जी की जय, बोलो भक्त वत्सला की जय।